जो लोग बहुत आर्टिस्टिक माइंड्स के होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चलती हुई गाड़ी को रुकवा देते हैं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, बहुत अच्छी रास्ते में मुझे एक ट्विग पड़ी हुई मिली है। आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को, मरी नहीं, हाँ, मिलने वालों को कराची में मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में ढूंढने वाले बहुत हैं। जो सूखी हुई शाख होती है, अब जाके आप जरा रास्ते में देखते हुए जाइएगा, सही है, सूखी हुई शाख ढूंढते हुए जाइएगा, अल्लाह ने मिसाल दी है उसकी, एक उस शाख की चांद के एक फेज से। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने चांद की मुख्तलिफ मराहिल, फेजेस, स्टेजेस, मरहले सेट किए, मुकद्दर किए, और इतने किए कि यहां तक कि वो एक सूखी हुई शाख की तरह का रह जाता है। तो हम जानते हैं कि चांद की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, सूखी हुई शाख कौन सी शेप है, क्रेसेंट जिसको आप कहते हैं, जिसके ऊपर हम लड़ते रहते हैं, नजर आया कि नहीं नजर आया, नजर आया कि नहीं नजर आया, ना नजर आए तो कहते हैं चांद खा गए, नजर आ जाए तो कहते हैं जबरदस्ती चांद कर दिया। किसी हाल में हम किसी को खुश नहीं रहने देते भाई। जो आपकी अथॉरिटी वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने आपके सर पर अथॉरिटी वाला बनाकर भेज दिया, दीन वाले लोग हैं, खुदा का वास्ता है, उनको उनका काम करने दें। हमें आदत है कि हम हर चीज के अंदर जो है वो लिटरली कीड़े निकालते हैं। बस लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं उनके चश्मे के ऊपर जो था वो चांद लगा हुआ था। बस लोग इतना मजाक बनाते हैं कि अच्छा उनकी बेगम के कपड़े नहीं सिले थे इसलिए उनको चांद नजर नहीं आया। दीज आर रिडिक्युलस थिंग, मतलब कमाल है। मतलब कोई बंदा मजाक भी करे तो कम से कम दीन के मामले में तो मजाक ना करे। जिस जो जो इंसान इतनी बड़ी अथॉरिटी लेकर खड़ा है, कभी आप उसके कंधों की जिम्मेदारी को महसूस तो करें। आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि पूरे पाकिस्तान में चांद का देखना आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप लीड करेंगे पूरी टीम को, और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी। और फिर उसके बाद आप पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए काम करें, और फिर आपके कान पर कॉन्स्टेंट ये आवाजें आती रहें कि आपकी बेगम के कपड़े नहीं सिले थे इसलिए आपको चांद नजर नहीं आया, या आपके चश्मे के ऊपर जो था वो चांद लगा हुआ था। दिल दुखेगा ना। मुसलमान बेअदब नहीं होते, मुसलमान इंसल्ट नहीं करते। अब हम तो ये सीख रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको सिर्फ ये नहीं सिखाया कि मुसलमान की तकरीम करो, अल्लाह ने हमें सिखाया है वलाकद करमना बनी आदम, तमाम इंसानों की तकरीम करो, और मुसलमान खास तौर पर अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, जो रुतबे में उनसे आला हो, उनकी इज्जत और तकरीम करने वाला होता है। खास तौर पे वो लोग जिनका कनेक्शन जो है वो दीन के साथ बन रहा हो, आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ चांद की मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में बात कह दी कि अल्लाह ने किस तरह से सूरज के मुकाबले में चांद को एक अलग पैटर्न कर रखा है। जैसे सूरज की 365 डिफरेंट पॉइंट्स हैं सनसेट और सनराइज के, चांद के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फेजेस रख दिए हैं। हमने पिछली कहानी के अंदर सूरज और चांद का कंपैरिजन देखा था। सूरज को हमने किससे कंपेयर किया था, याद है, जब हम करिया वालों की कहानी देख रहे थे, तो वहां मैंने एक हिंट आपको दिया था और मैंने कहा था आगे ये बात आएगी कि सूरज की मिसाल और चांद की मिसाल कैसे है। सूरज की मिसाल, चलें, सूरज कुरान में उस हस्ती को सिराजम मुनीरा कहा गया है। सूरज की मिसाल किसके साथ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 46 में आता है वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के रास्ते पर बुलाने वाले, व सिराजम मुनीरा और रोशन चिराग। सिराजम मुनीरा सूरज को कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज से कंपेयर किया गया है, और आपके सहाबा को किससे कंपेयर किया गया है, चांद से कंपेयर किया गया है। ये खूबसूरती आपको इस, ये स्पिरिचुअल फिनोमेना आपको इस आयत में मिलता है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो सूरज की रोशनी हमने कहा था कांस्टेंट होती है। क्या ऐसा होता है कि एक दिन सूरज निकला तो वो आपको आधा नजर आ रहा है, अगले दिन निकला तो वो आपको क्रेसेंट मून की तरह नजर आ रहा है, फिर उसके बाद निकला तो अब आपको जो है वो बिल्कुल फुल मून की तरह नजर आ रहा है, या सूरज की रोशनी कांस्टेंट होती है? सूरज कांस्टेंट होता है, बिल्कुल जिस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान कहा जाता है कांस्टेंट था। मोमिनीन का ईमान घटता और बढ़ता है, जैसे इमाम अबू हनीफा कहा करते थे अल ईमानु यजीदु व यनकुस, ईमान ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांस्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस थे, बिल्कुल जैसे सूरज कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट रहा है अक्रॉस द ह्यूमैनिटी। जब भी आप देखें इतना कांस्टेंट रहा सूरज का मामला, और सूरज का फायदा इतना ज्यादा ह्यूमैनिटी ने हमेशा देखा, सूरज ना हो तो हरारत जमीन से ना उठे पानी के ऊपर से, और बादल ना बने, बादल ना हो तो बारिश ना बरसे, बारिश ना हो तो आपका फल सब्जी अनाज ना उगे, ये ना उगे तो फेमाइन आ जाए, फेमाइन आए तो इंसान मर जाए। इसीलिए आप देखें कि हमेशा से तारीख में सूरज को, सन गॉड को बड़ी प्रेफरेंस दी गई हमेशा से। हमारा जो सन डे है उसका बैकग्राउंड मालूम है ना क्या है, अब हम मजबूर हैं हम सन डे कहने को उसको। इट वॉज एक्चुअली अ सन गॉड डे, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सन गॉड डे इज संडे नाउ। सो हमेशा से आपने जितनी भी रोमन माइथोलॉजीज हैं, आपकी ग्रीक माइथोलॉजीज हैं, आप इसमें पढ़ें, आपको हमेशा सन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता है। आज भी ये सन गॉड का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग है बाज रिलीजन्स के अंदर। तो अल्लाह ताला ने यहां वाजे कर दिया कि बिल्कुल जैसे इंसानियत डी ट्रैक हो गई, हाँ सूरज कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट जरूर है लेकिन ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह के साथ शरीक नहीं हो सकता। जैसे अल्लाह ने सूरज को सोर्स ऑफ लाइट बनाया, ऐसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सोर्स ऑफ गाइडेंस बनाया, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और सिराज मुनीर रोशन चराग। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज से कंपेयर किए गए तो अब कौन था जो आपसे इल्यूमिनेट हो रहा था, सहाबा चांद की तरह, वो आपसे रोशनी को ले रहे थे और उसको आगे पहुंचा रहे थे। फिर यहां पर अभी आपको मैंने मफहूम बताया था तजरी लि मुस्तकर रिल्लाहा का, मतलब क्या है, एक ये कि ये हर दिन अलग पॉइंट पर आता है और एक ये कि इसने एक दिन खत्म हो जाना है, इसका जो एक डिटर्मिंड कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। इससे मिसाल जो मुफस्सरीन ने ली वो कहते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज से कंपेयर किया गया और सूरज एक वक्त में खत्म हो जाएगा, तो इसमें अलामत थी, इसमें निशानी थी तमाम नए मुसलमानों के लिए और सहाबा के लिए और कुरैश के लिए, वो भी सुन रहे थे कि देखो ये सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ हिदायत हमेशा नहीं रहेगा तुम्हारे सामने, ये चले जाएंगे दुनिया से, ये वक्ती तौर पर यहां मौजूद हैं, तो तुम जितना इनसे फायदा उठा सकते हो इनसे फायदा उठा लो। जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड को तुम समझ रहे हो कि दुनिया खत्म हो जाएगी और सूरज खत्म हो जाएगा, इसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लिमिटेड टाइम के लिए हैं, सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ हिम जितना ले सकते हो। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये एक बहुत बड़ी अथॉरिटी इज्जत वाले इल्म वाले का बांधा हुआ कैलकुलेशन है, अल्टीमेट अथॉरिटी की कैलकुलेशन है। यानी जिसने रसूल को भेजा है वो कौन है, अल अजीज, जिसने सूरज को कायम किया है वो कौन है, अल अजीज। पीछे अल अजीज हमने पढ़ा था बिल्कुल शुरू में, कुरान किसने नाजिल किया है, अल अजीज। तो आपको कांस्टेंट सूरह यासीन के अंदर अल्लाह के इस नाम की तकरार मिलती है, और जब आप अल्लाह का नाम अल अजीज और अर रहीम मोस्ट ऑफ द टाइम सुनती हैं तो ये आपको अल्लाह की हस्ती का बैलेंस बताता है, ना रहमान की शान रहीमी से धोखा खाना और ना अल्लाह की इज्जत रिस्पेक्ट को कम करते हुए अल्लाह के मुकाम को और उसकी अथॉरिटी को निग्लेक्ट कर देना। कांस्टेंट आपको सूरह यासीन में यह चीज मिलती है, अल्लाह ने जिस कुरान को भेजा है, जिस तंजील को नाजिल किया है, उसी अल्लाह अल अजीज ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, और कब तक रखा है, उसकी फाइनल अथॉरिटी अल्लाह ही के पास है। ये जो तजरी का लफ्ज आया सूरज का चलना, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अबू दर से एक हदीस आती है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने जमीन जो है वो अपने रब से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हर दिन इज़न लेती है, हुक्म लेती है। इसी तरह से सूरज हर दिन निकलने से पहले अल्लाह के पास जाके अल्लाह से इजाजत लेता है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है। यानी वो इजाजत किस चीज की लेता है, आज निकलूं या ना निकलूं, जिस दिन नहीं निकलेगा तब क्या होगा, कयामत आ जाएगी। तो वो हर दिन अल्लाह के हुजूर जाता है और अल्लाह से इजाजत मांगता है। अब इस बात को बहुत से मुसलमान भी नहीं मानते, वो कहते हैं कैसे पॉसिबल है कि सूरज जो है वो हर दिन जाए और अल्लाह से इजाजत लेकर आए। देखिए, अगर आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई कुरान की बात और हदीस की बात नहीं आती तो एक उसूल अपने जहन में बना लें, आपकी और मेरी अकल लिमिटेड है, आप और मैं एक सर्टन डायमेंशन से आगे सोच नहीं सकते। जो वाकया मेराज हुआ था, वाकया मेराज में जो अहदीस बताती हैं, कि आपके कमरे की जो कुंडी थी वो आपके वापस आने तक हिल रही थी. सो दुनिया में तो टाइम गुजरा ही नहीं था और आपको आर्स एंड आर्स के एक्सपीरियंस करा दिए गए. आपको एक आपको पहले मस्जिद अक्सा ले जाया गया, वहां से आपको पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर अल्लाह से आपका कलाम हुआ, अल्लाह से आपकी गुफ्तगु हुई, फिर आपको जन्नत और दोजख के नजारे कराए गए. दैट वॉज कॉन्स्टेंट. इसमें तो घंटों के घंटों लग गए. और आपको फरिश्तों से मुलाकात कराई गई. वहां पर आपकी मुलाकात जिस फरिश्ते से भी हुई, आप कहते हैं कि जो फरिश्ता मुझे मिलता था वो मुझे ग्रीट करता था और मुस्कुराता था, सलाम करता था और मुस्कुराता था, सिवाय एक फरिश्ते के. कौन सा फरिश्ता था? जहन्नुम का दरोगा, द गार्ड एंजल ऑफ द हेल फायर, मालिक जिसका नाम आता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने उसको सलाम किया और उसने मुझे सिर्फ जवाब दिया, मुस्कुराया नहीं. तो मैंने जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा कि सब फरिश्ते मुझे मिले और उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर वेलकम किया सिवाय मालिक के. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम आता है, हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि जब से जहन्नुम बनी है मालिक ने मुस्कुराना छोड़ दिया है. सो आप और मैं, और हम जहन्नुम पे जोक्स बनाते हैं. वो फरिश्ता है जो खुद नहीं जल रहा उस आग में, उसको जलना भी नहीं है उस आग में, वो तो सिर्फ गार्ड फरिश्ता है. लेकिन उस जहन्नुम की इंटेंसिटी, उस आग की इंटेंसिटी इतनी है कि उसने हंसना छोड़ दिया है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, अगर तुम्हें कब्रों की हकीकत मालूम हो जाए या जो कब्र में अजाब दिया जाता है अगर तुम्हें उसका हल्का सा भी ग्लिम्स पता चल जाए तो तुम मुस्कुराना छोड़ दो और तुम रो ज्यादा. और एक हदीस के अल्फाज में आता है कि तुम बीवियों के पास जाना छोड़ दो, इतना तुम्हारे ऊपर गम तारी हो जाए. इसलिए कि जब मुर्दे को अजाब दिया जाता है तो इंसान और जिन के अलावा बाकी तमाम मखलूकात सुनते हैं, तमाम मखलूकात सुनते हैं. आप सोचें हमारे घरों के बराबर में कब्रिस्तान है. हमारे भी तो यहाँ कितने फेजन में दो कब्रिस्तान है, इतने बड़े बड़े ह्यूज. अल्लाह तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए और हर एक को कब्र के अजाब से बचाए. लेकिन अगर मुर्दों के कब्रों में आवाजें आना शुरू हो जाएं, हम रह सकते हैं घरों में ऐसे? अब मुर्दों की आवाज तो बहुत दूर की बात है. एक बहुत ही साइंटिफिक बात अगर मैं करूं, आपके अपने जिस्म की जो आवाजें हैं, कभी किसी के पेट पे कान, अपने बच्चे के पेट पे कान लगा के देखें, खासतौर पे जब 3 बजे के बाद जब बेचारे का पेट खाली हो रहा हो तो वो बोलता रहता है ना, कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है, बोलता है. अल्लाह ताला ने तो हमारे जिस्म पे साइलेंसर लगाया हुआ है. अगर आप स्टेथोस्कोप लगाती हैं और कोई अगर स्टेथोस्कोप में जरा सा भी खट करता है तो कैसे आपका कान फटता है? जो आप अपने पूरे जिस्म के ऊपर जरा स्टेथोस्कोप लगा के देखें, इवन आप यहां भी लगाएंगे ना बाजू में, तो भी आपको कोई ना कोई आवाज अपने कान में महसूस होगी. अल्लाह की तो बड़ी रहमत है, इतना रहीम रब, इतना रहमान रब, कैसे हो सकता है कि हम उसकी नाफरमानी करें? कैसे हो सकता है कि हम उसकी बताई हुई निशानियों को देखकर भी उस तक ना पहुंच सकें? जो कि हम अकलमंद लोग हैं, जो कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हर चीज की समझ है, हमें अच्छा बुरा मालूम है, हमारे बच्चों को भी अच्छा बुरा मालूम है. हमारे बच्चे कम हैं, माँ बाप से पहले बच्चे सारी यूनिवर्सिटीज को अच्छी तरह से खंगाल लेते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ क्या फायदा होगा, कहाँ कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, ताकि जब अब्बा के सामने लेकर बैठूं तो तकरीर तो अच्छी कर सकूं. कितनी अकल चलती है इन चीजों में. और एडमिशन फॉर्म्स जो फिल करने होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो आसान काम है? आजकल के अम्मा अब्बा नहीं फिल कर सकते. मैं हकीकत बता रही हूँ, जो बच्चे फिल कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स, इतने बड़े बड़े 10-10 सफ़ों के उनको ऐसे लिखने होते हैं, इतना कुछ उसके अंदर लिखना होता है, कितनी अकल चलती है? क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा, इतनी अकल चलती थी, इतना आपका मेंटल एक्यूमेन था, इतनी बात समझ आती थी, इतनी समझदार थी, तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए इस अकल को जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया? अल्लाह ने तो आसपास निशानियां रख दी हैं. तो अगर कोई ये बात कहता है कि हमें कैसे पता हो कि सूरज जो है वो अल्लाह को जाकर इजाजत लेता है और सजदा करता है, तो इसके अंदर कोई आउटरेजियस बात करने की जरूरत नहीं है. हमारा ईमान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बता दी हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं. अल्लाहु कादिरुन अला कुल्ली शय. आप और मैं तो एक आंख ब्लिंक करते हैं. अगर आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट रियालिटीज को जानते हो, आपके और मेरे एक आंख ब्लिंक करने में कितनी गैलेक्सीज खत्म हो जाती हैं और कितनी बॉर्न हो जाती हैं, जरा पढ़िए तो इसके बारे में, जो डायनामिक्स हैं, जो स्पेस डायनामिक्स हैं, अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो आपको अंदाजा हो. एक ब्लिंक ऑफ एन आई, हम इस वक्त आंख से सूरज को देखते हैं, सूरज अपने सामने नजर आता है, आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं कि सूरज ये सामने ही मौजूद है. आपको और मुझे सूरज की रोशनी 8 मिनट के बाद पहुंचती है, जैसा साइंटिफिक फिनोमेना. और फिर हम कहते हैं कि हमें हदीस समझ नहीं आई. कैसे पॉसिबल है हदीस में कि सूरज जाके जो है वो अल्लाह से इजाजत लेगा? अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपकी अकल की कमी है. इसको अपनी अकल की कमी की हद तक ही रखें. कुरान में आता है वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला. तुम्हें तो अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ा सा इल्म दिया है. किस पर इतराते हो? कौन सी रिसर्च और थीसिस करके और पीएचडी करके इतराते हो? कौन सी इन्वेंशन करके इतराते हो? कौन सा कुरान का कोर्स करके इतराते हो? वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला. तुम तो बहुत कम इल्म दिए गए हो. तकब्बुर से बचो, वरना तकब्बुर तुम्हारे आसपास आगे पीछे उस सद को खड़ा कर देगा जिसके जरिए तुम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकोगे. आप कभी बायोग्राफीज पढ़ें जो नॉन मुस्लिम ग्रेट साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनकी बायोग्राफीज भी पढ़ें, तो अल्लाह उनके मुंह से भी वो जुमले निकलवा चुका है कि जिससे आपको अल्लाह की हकीकत नजर आती है. एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इनका नाम आता है रिचर्ड फाइनमैन. फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था. और इन्होंने ये कहा था, इन्होंने जब अपनी स्पीच की, जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो इनकी स्पीच में एक जुमला था, इन्होंने कहा फिजिक्स इज द एक्सपैंडिंग होराइजन ऑफ आर इग्नोरेंस. यानी हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं फिजिक्स की फील्ड में, उतना हमें अंदाजा होता है कि हमें कुछ नहीं पता. जितना इंसान इल्म में आगे जाता है उतना उसको अंदाजा होता है मैं तो कुछ भी नहीं जानती. दिस इज द माइंड सेट ऑफ एक्चुअल आलिम, जिसको असल में इल्म की पहचान आ जाए. लेकिन फिर भी अगर साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े जुमले बोलने के बाद इल्म पर आगे बढ़कर अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, तो सिर्फ फिर एक ही चीज बैरियर बनती है, और वो है तकब्बुर, एरोगेंस. अल्लाह ने कह दिया वशम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिल्लाहा ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. अल्लाह ने इस कांस्टेंट सूरज को जब तक के लिए रखा है ये अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद अल्लाह ताला इसको खत्म कर देगा. वल कमरा قَدَّرْنَاهُ मनाजिल, और हमने कैलकुलेशंस के साथ चांद को स्टेजेस दिए हैं. जैसे हमने सूरज को फिक्स किया है रोशनी के वाइज, चांद को हमने मुख्तलिफ स्टेजेस और मरहलों में डिवाइड कर दिया है. कुरान में आता है لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, ताकि हम इसके जरिए जमा दें आपके दिल को. ये किसके लिए आया है? لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, ये काफ की जमीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रही है. इसीलिए मुफस्सरीन कहते हैं कि आपका ईमान कॉन्स्टेंट था, आपकी इस्तिकामत कॉन्स्टेंट थी, आपकी स्पिरिचुअलिटी कॉन्स्टेंट थी. आपकी और मेरी तरह नहीं, एक दिन बहुत अच्छा रोजा, एक दिन रोते हुए रोजा, एक दिन बहुत अच्छी तरावी, एक दिन आंखों के शटर गिरते गिरते तरावी. आंखों के शटर गिरते नींद से, पता नहीं चलता कि दो पढ़ी कि छह पढ़ ली. फिर कहते हैं या अल्लाह क्या करूं, दोबारा वजू करके आती हूँ. आती है ना कभी कभी इतनी नींद? सारी बात है, अब अपनी दोपहर की नींद की कुर्बानी देके यहाँ आके बैठ रही हैं. मोमिन के साथ ये मामला होता है, सहाबा के साथ भी होता था. कभी ईमान बहुत अच्छा, कभी ईमान के बहुत अच्छे दिन, कभी ईमान के बहुत कमजोर दिन. मोमिन का ईमान कांस्टेंट नहीं होता. इसलिए कहा हत्ता आदा कल उर्जुनल कदीम. कभी कभी ये इतना बारीक हो जाता है कि बिल्कुल एक पुरानी शाख की तरह, ड्राई ट्विक की तरह बारीक हो जाता है. इसमें स्कॉलर्स ने कहा कि इसमें चांद और सूरज की कैलकुलेशंस के साथ साथ एक और स्पिरिचुअल साइन मौजूद है, और वो ये है कि उम्मत पर कभी ऐसा वक्त आएगा कि उम्मत फुल मून की तरह ब्लॉसम कर रही होगी, और कभी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि इट विल बी ऑलमोस्ट डार्क. कभी ऐसा होता है ना, आखिरी तारीखों में चांद गायब हो जाता है, नजर नहीं आता. जब उसको फर्स्ट के लिए अपीयर होना होता है तो आखिर की 28, 29, 27 में चांद गायब हो जाता है, नजर नहीं आता. तो मुफस्सरीन कहते हैं कि उम्मत पर भी ये वक्त आता है कि जब उम्मत बेयरली किसी रोशनी के साथ होती है, यानी वो कमजोरी की अलामत में होती है. मगर इस मौके पर मुसलमानों को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब चांद गायब होता है तो दोबारा रोशन होने के लिए गायब होता है, और फिर जब उसमें रोशनी आना शुरू होती है तो वो उसको पूरे फुल मून के ऊपर लेकर चली जाती है. तो इसके अंदर निशानी है मुसलमान हिम्मत के साथ इस दीन को थामे रहें. अगर आज तुम कमजोर हो, दिस टू शैल पास. इंशाल्लाह ये ईमान की ताकत, ये उम्मत की ताकत दोबारा सामने आएगी, ये रोशन होगी. बिल्कुल जैसे पहला चांद, पहली तारीख का चांद बारीक होता है और 14वीं तारीख तक वो कितना बेहतरीन तरीके से नजर आने वाला हो जाता है. بعض اسکالرز نے سورت یاسین کی دو آیتوں کے درمیان میں کمپیریزن بڑا خوبصورت کیا. انہوں نے کہا وہ جو آیت آئی تھی خشی الرحمن بالغیب, ایک وہ انسان ہے جو دل دل میں یا غیب میں رحمان کا خوف رکھتا ہے. وہاں ہم نے اسپریچویلٹی کے تین سٹیجز ڈسکس کیے تھے. ایک یہ کہ ایمان دل میں احساس ہو جائے کہ ہاں اللہ کی بات, اللہ کا حکم, اللہ کی دیوی شریعت سچ ہے, ابھی چھپا ہوا ہے. دوسرا کیا تھا, چھپ کے عبادت کرنے والا. اور تیسرا کیا تھا, ڈنکے کی چوٹ پر آؤٹ لاؤڈ اپنے اسلام کا اظہار کرنا. خشی الرحمن بالغیب از لائک جو کہ ابھی پہلے دن کا چاند ہے, ڈرتے 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 دین کے راستے پہ چلنے والا. اور جب فل مون آتا ہے تو وہ مثال آپ کو سورت یاسین میں دوسرے حصے کی کہانی میں ملتی ہے, وہ جو رجل تھا وجاء من اقصى المدینۃ یسعى, اب اس کی اسپریچویلٹی کا لیول تیسرے لیول پر آ گیا, جو کہ کنوکشن کے ساتھ عمل کر بھی رہا ہے اور معاشرے کو سیدھا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. تو جو یاد رکھیں, جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد ان کے ساتھ ضرور کرتے ہیں. یہ رائز اور فال, یہ چڑھنا اترنا سورج اور چاند کی مثال کے ساتھ مسلمان امت کے لیے موجود ہے. اب اس سے تو پتہ چل گیا ہمیں اس اسپرچل ٹروتھ سے کہ ایک وقت آئے گا امت دوبارہ کھڑی ہوگی. اس وقت امت کا کیا حال ہے, اس وقت امت شاخ کے برابر بھی نظر نہیں آئے, لگ رہا غائب بھی ہے آلموسٹ. چلیں بی آپٹمسٹک, شاخ کے برابر ہے. اب آپ نے سن لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ امت فل مون کی طرح ہو جائے گی, فل مون جو کہ پھر پورے اندھیری رات میں بھی چاہے دنیا میں کتنے بھی گناہ ہوں گے, چاہے دنیا میں کتنی بھی ناانصافی ہوگی, اس امت کی روشنی انشاءاللہ آس پاس کی چیزوں کو, حقیقتوں کو منور کر رہی ہوگی. یہ خواب ہم نے دیکھ لیا بیٹھ کے یہاں پہ, آپ نے یہ آیت پڑھ لی, آپ نے کہا ہاں دیکھنا انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا پر مسلمان حکومت کریں گے, سپر پاور بن جائیں گے. اب انتظار کرتے رہیں اس وقت کا, کیا کریں؟ دیکھیں وہ وقت تو مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, واللہ عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر سے اسلام کا کلمہ بلند ہوگا. اب وہ ہر گھر سے اسلام کا کلمہ بلند ہوگا, اس کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں, لیکن وہ وقت آپ اور میں ایکسپیرینس کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا. اس وقت کی پوزیشن کیا ہے, میں کیسے اس امت کو ایک ٹوگ سے فل مون بنانے کی طرف اپنا حصہ ڈال سکتی ہوں, بالکل اس رجل کی طرح جس نے زیرو ریسورسز کے باوجود اپنے زمانے میں موجود رسولوں کی بہترین مدد کی. آپ جہاں بھی ہیں, آپ مجھے نہ دیکھیں میں آپ کو نہ دیکھوں, ہاں پسندیدہ یہ ضرور ہے احادیث کے علم کے مطابق کہ آپ دین میں آگے بڑھنے والوں کو ضرور رول ماڈل بنائیے, تاکہ آپ کو اپنی کم علمی کم جو عمل ہے وہ کافی نہ لگے. بہتر ہے کہ آپ ان کو رول ماڈل بنائیں جو دین میں دوڑ رہے ہیں, دس از بیسٹ. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے والا کوئی دین پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے, آپ آٹومیٹک نوشن لیتی ہیں یہ ہیں ہی زیادہ طاقتور مجھ سے, ان میں زیادہ اسٹیمنا ہے, ان کی فیملی سپورٹیو ہے. اور جب آپ اتنے سارے چار پانچ ایکسکیوزز سوچتی ہیں تو گھر جاتے جاتے ساتھ آپ کہتی ہیں میں اپنے گھر میں ایسی ہی اچھی ہوں, بس قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لی نا کافی ہے. اس لیے بہتر ہے آپ مجھے نہ دیکھیں اور میں آپ کو نہ دیکھوں. آپ اس وقت ایمان کے جس بھی لیول پر ہیں, اللہ سے سچے دل سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے رمضان میں اس ایمان میں 10 درجے بڑھا کے نکالیے. ابھی سٹیپ لیں کوئی, اور اس کے لیے رمضان سے باہر نکلنے کے لیے آخری عشرے کا انتظار نہیں کرنا, شوال کے چاند کا انتظار نہیں کرنا کہ جب شوال کا چاند نظر آئے گا آٹومیٹک میرے ایمان کے 10 درجے بڑھ جائیں گے. آبویسلی میں نے 18 دن جا کے قرآن بھی تو سنا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ 18 دن یہاں سے سنیں گے, پھر اس کے بعد آپ باقی جا کے پاس 12 دن ہوں گے, جو آپ کے آس پاس اویلیبلٹی ہوگی آپ ان کو بھی سنیں گی. ہم نے تو مجبوری میں یہاں 18 دن رکھا ہے اس لیے کہ مجھے ایک دوسری جگہ ایک پروگرام کرنا تھا, ورنہ میری آپ کو یہی نصیحت ہوگی کہ یہاں 18 دن مکمل ہو جائیں, آپ قرآن مت بند کیجیے گا, اس تدبر کے عمل کو بند مت کیجیے گا, जो आपके घर के आसपास क्लास हो रही है प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा, इसलिए कि ये महीना मैक्सिमम कुरान के साथ वक्त गुजारने वाला है। ये महीना ऐसा है कि जिसका एक लम्हा भी जाया नहीं होना चाहिए, और मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ स्पीकर्स को सुनिए। उससे इंसान को फायदा ये होता है कि इंसान का विजन बुलंद होता है, इंसान को मुख्तलिफ एंगल समझ आते हैं। हाँ, बेहतर होता है एक कंप्लीट चंक आपने एक स्पीकर से सुन लिया ताकि आपको क्लैरिटी उस पोर्शन की मिल गई। आई एम श्योर आप जब भी सूरह यासीन की आयात आप पढ़ेंगी, आपके जहन में, बैकग्राउंड में बातें घूमेंगी जरूर, मफहूम समझ जरूर आएगा इंशाल्लाह। तो यहां पर यह बात वाजे की गई है कि अब आपने और मैंने क्या करना है। आपका और मेरा काम यह है कि हम आज से अपने ईमान के उस लेवल को बढ़ा लें जहां में सुबह थी। अब उसके लिए आपने कौन सा कदम उठाना है, इट्स अप टू यू। एक दूसरे का इंतजार नहीं करना, बस हमने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज करना है। आगे आयत नंबर 40 आ रही है, लशम्सु यनबगी लहा अंतुद्रिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज का ये काम नहीं है, यानी सूरज के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, यनबगी मुनासिब नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो चांद को जाकर पकड़ ले। सूरज का ये काम नहीं है कि चांद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को थाम ले, यानी सूरज की अपनी जॉब है। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना रात दिन से आगे जा सकती है। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और सब के सब अपने अपने ऑर्बिट में या ऑर्बिट में फ्लोट कर रहे हैं। यहां बता दिया सूरज का अपना काम है, सूरज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चांद की अपनी जॉब है। सूरज को चांद की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। इस आयत से स्पिरिचुअल फैक्ट पता चल रहा है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को काफी कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? जब हम कह रहे हैं कि आयत कह रही है कि सूरज को, सूरज के लिए मुनासिब नहीं है कि वो चांद को कैचअप कर ले, इसका मतलब है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिम्मेदारी है, सहाबा की अपनी जिम्मेदारी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो तरीका कार अप्लाई नहीं करेंगे जो सहाबा को दिए गए हैं, जो जिम्मेदारी उनकी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक की वजह से दूसरा इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुकाम है, सहाबा का अपना मुकाम है। एक की वजह से दूसरा इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। इसी पॉइंट पर जब एक रसूल और बाकी फॉलोअर्स, उनमें कंपैरिजन करके भी कह दिया कि एक की वजह से दूसरा इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, तो कैसे अल्लाह ताला दो रसूलों में मुआजना करा सकते थे? कोई भी एक रसूल दूसरे के से बढ़कर कैसे नहीं हो सकता? सिर्फ हमने बात की थी तफदील हो सकती है, वरना हर एक का अपना मुकाम है, हर एक की अपनी जॉब थी, हर एक की अपनी जिम्मेदारी थी। और हम ये पीछे इसी सूरत में भी पढ़ आए, तीन रसूल मौजूद थे करिया में, तीन की मौजूदगी में भी एक उम्मती ने, एक फॉलोअर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये आपको बता रही है कि हर एक का अपना मुकाम है, हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ने वाजे कर दिया, लशम्सु यनबगी लहा अंतुद्रिकल कमर, जो सूरज की मिसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तकिल कंपेयर की जा रही है, वो क्यों कंपेयर की जा रही है? स्कॉलर्स ने उसकी दलील भी दी है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। एक, सूरत अहजाब की आयत नंबर 46 में आपको सिराजन मुनीरा कहा गया था। दूसरा, इसी सूरत में, सूरत यासीन में आगे आयत नंबर 69 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया है, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लहू, हमने इनको शेर नहीं सिखाया और इनको ये सूट भी नहीं करता। यही लफ्ज यंबगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयत नंबर 69 में आया है, यही लफ्ज यहां सूरज के लिए आया है। इससे इमाम कुर्तुबी, इससे इब्ने जरीर, इन सब ने ये बात मेंशन की कि ये जो मुकाम है आयत नंबर 69 का, ये वाजे कर रहा है कि पीछे सूरत यासीन में जब जब सूरज का जिक्र हुआ है और वहां यम बगी का लफ्ज आया है, उसका कनेक्शन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिवेलप किया गया है। दिस इज अ लिंग्विस्टिक दलील कि सूरज को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर किया गया है। कुरान की आयात का उसलूब आपको ये और भी सूरतों में मिलता है, एक ही सूरत के अंदर कोई नया लफ्ज लाया जाता है और फिर उसको आगे कहीं और लाया जाता है, जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, जस्ट टू मेक अ लिंग्विस्टिक कनेक्शन। ये आपको खूबसूरती मिलती है। इमाम राजी की तफसीर अगर आप पढ़ें, या अगर महमूद अकज़मक्शरी की तफसीर आप पढ़ें, तो उसमें आपको इस तरह के कनेक्शंस बहुत खूबसूरती से मिल जाते हैं। सूरज के लिए बता दिया कि सूरज कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, चांद सूरज से रिफ्लेक्शन लेता है, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी प्रेजेंस से ही, अल्लाह ने जो उनके ऊपर नूर कुरान नाजिल किया उनकी वजह से ही सहाबा ने जुलुमात के अंदर इस हिदायत को थाम लिया। तो एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो दलील है वो मौजूद है। हाँ, एक बात याद रखें, जब हम ये मुस्तकिल पढ़ रहे हैं कि आपका अपना मुकाम था रसूल अल्लाह का और सहाबा का अपना मुकाम है, तो अब कोई ये ना समझे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा एक ही मुकाम जैसे हो गए। यकीनन नो कंपैरिजन बिटवीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, नो कंपैरिजन। जैसे सूरज और चांद का कोई कंपैरिजन नहीं है, सूरज और चांद का कोई कंपैरिजन है? आप किसी को समझा रही हो, आप कहें कि देखें रसूल अल्लाह का अपना मुकाम था, सहाबा का अपना मुकाम था, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी थी, दोनों अपने अपने मुकाम पर थे, कोई एक दूसरे की वजह से इनसिग्निफिकेंट नहीं हो रहा था, अब आपसे कहें नाउज़ुबिल्ला। लोगों को तो मौका चाहिए होता है बात में से बात निकालने का, वो कहें नाउज़ुबिल्ला, आपने अल्लाह के रसूल, कहाँ अल्लाह के रसूल, कहाँ इंसान सहाबा, आपने उनके साथ मिला दिया? आप कहें नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलाया, हमने कहा उनका अपना मुकाम और सहाबा का अपना मुकाम, बिल्कुल जैसे सूरज का चांद से कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुकाबला नहीं था स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इखलाक पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सहाबा कराम से।